ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఆదరణీయ శీలు దీదీజీ హమారే మధ్య ఉపస్థిత్ హై. హమ్ ఏక్ హాత్ కి తాలి సే దీదీజీ కా స్వాగత్ కరెంగే. దీదీజీ కా పరిచయ ఇస్ ప్రకార్ సే హై. విశ్వ మే आध्यात्मिक क्रांति का जय घोष करने वाली आदरणीय शीलू दीदी ने सन 1960 में 12 वर्ष की अल्पायु में ही परमात्मा को पहचाना और सन 1969 में अपना सर्वस्व प्रभु पर न्योछावर कर दिया. आज हमको ब्रह्मा कुमारी के सैकड़ों चेहरे टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं, परंतु टीवी पर परमात्म प्रत्यक्षता का आगाज करने वाली शख्सियत हमारी शीलू दीदी ही हैं. पांचों महाद्वीपों के 75 देशों में भ्रमण कर आपने सर्वत्र आध्यात्मिकता की अलख जगाई है. ब्रह्मा कुमारीज के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम राजयोग शिविर की आप निर्देशिका हैं. मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि आपको स्वयं परमात्मा द्वारा ये वरदान प्राप्त है कि आपकी जीवा पर स्वयं ज्ञान देवी सरस्वती का वास होगा और सचमुच आपकी ज्ञानमय वाणी अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनी है. सन 1923 में वुमन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित आदरणीय शीलू दीदी के प्रति कुछ भाव सुमन आपके समक्ष रख रही हूँ. दीदी, बोलते हैं आप तो लगता है जैसे ईश्वर गा रहे हैं. बोलते हैं आप तो लगता है जैसे ईश्वर गा रहे हैं. सुमधुर वचन तुम्हारे ईश प्रेम की गंगा बहा रहे हैं. सुमधुर वचन तुम्हारे ईश प्रेम की गंगा बहा रहे हैं. ऐसी प्रेमामय शीलू दीदी की अविरल ज्ञान धारा अब हमें अभिभूत करेगी, ऐसी हमारी शुभाकांक्षा है. आदरणीय शीलू दीदी जी, आज हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे. दीदी जी,
इस सारी भट्टी का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी शकुंतला बहन करेंगी. आप भी अपना परिचय दीजिए.
नाम तो ब्रह्मा कुमारी शकुंतला और मैं इंदौर में जो कन्या छात्रावास है शक्ति निकेतन हॉस्टल वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ. और मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित हुए 36 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है. हम तीन बहनें बाबा के घर में समर्पित हैं. मेरी बड़ी बहन डॉक्टर सविता जो मधुबन में ही निवास करती है, पहले तो पांडव भवन में रहते थे और अभी शांतिवन में रहते हैं. वो महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है. और दूसरे नंबर
नेशनल कोऑर्डिनेटर, महिला विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर.
अच्छा, महिला विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है. और दूसरे नंबर पे मैं हूँ, मैं इंदौर में रहती हूँ. और मैं समर्पित होने के पहले गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन जब बाबा का परिचय मिला तो निश्चय हो गया भगवान धरती पर आया है और उसे हमारी मदद चाहिए पवित्रता की, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, नई सत्यों की राजधानी स्थापन करने के लिए. तो जब परमात्मा से इस पवित्रता के आह्वान की बात समझ में आई तो इस पवित्रता के मार्ग पर अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया. हम दोनों बहनें एक ही दिन समर्पित हुए, सविता दीदी और हम. और मेरी छोटी तीसरी बहन है मंजू बहन, वो ओआरसी में समर्पित है. तो इस प्रकार से हम तीनों बहनें बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं. और आज आपके साथ हमें भी ये एक लॉटरी मिली है मधुबन पांडव भवन में तपस्या करने की. भट्टी का संचालन करना ये तो एक निमित्त मात्र है और इसके माध्यम से हम भी आपके साथ क्या करेंगे, डबल लाइट योग साधना भट्टी करेंगे. ओम शांति.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन में आना और यहाँ 3 दिन तपस्या करना ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से कुछ गिनी चुनी आत्माएं हो जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई, सर्व वरिष्ठ बहनें, सर्व मधुबन निवासी तथा मेरे तरफ से आप सभी का इस तपो भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन में आकर योग भट्टी करना माना यह लक्ष्य लेकर आना कि हमें पहले पहले परिवर्तन करना है, अपना अपनी कमियां कमजोरियां जो कुछ भी हमारे अंदर है उन सबको स्वाहा करना। तो उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा आप सब बच्चे कहाँ आए हो, ये स्थान कौन सा है। तो बाबा ने पहले कहा यह ईश्वरीय परिवार है। यहाँ भी बैठ सकते हैं, इधर भी जगह है, यहाँ भी बैठो भले, इधर ना कंजेस्टेड होके क्यों बैठ रहे। यह ईश्वरीय परिवार है, रूहानी परिवार है जिसमें शिव बाप, ब्रह्मा दादा और हम सब आपस में भाई बहन। ईश्वरीय परिवार के सबसे बड़ा ईश्वरीय परिवार, दुनिया में ऐसा बड़ा परिवार किसी का भी नहीं होता है। लेकिन हम उस नशे से कहते हैं कि ये हमारा ईश्वरीय परिवार दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है। आजकल तो परिवार घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और यहाँ ये परिवार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरा ये कौन सा स्थान है, बाबा ने कहा यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विद्यालय तो अनेक होते हैं लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक ही है जहाँ स्वयं ईश्वर हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। और तीसरा बाबा ने क्या कहा, ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम सब अपना तन मन धन स्वाहा कर रहे हैं। किस लिए, नई दुनिया की रचना करने लिए। इसी यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसी यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो ऐसे यज्ञ को संभालने वाले हम सभी पवित्र और योगी ब्राह्मण हैं जो भगवान के साथी हैं। भगवान खुद कहते हैं मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम बच्चों का साथ है मुझे। तो ऐसा सौभाग्य केवल इस समय ही मिलता है सारे कल्प में। तो तो ऐसे ऊंचे स्थान पर आप आए हो और आपको जब ये गले में माला मिली तो आपको ठप्पा लगा। हम कहते ये विजय माला आपने पहनी है, जो हमेशा हर वक्त आपको पहन कर रखनी है। खास करके जब ओम शांति भवन से पांडव भवन आते हैं तो यहाँ पहरे पर वो सिक्योरिटी वाले अगर ये कुछ बैज नहीं होगा तो पूछेंगे आपका बैज कहाँ है, इसलिए हर वक्त पहन के रखना है। तो आपको ये विजय माला मिली है और ठप्पा लगा, क्या डबल लाइट योग तपस्या भट्टी, क्या लिखा है नाम पढ़ा आपने, क्या लिखा है? डबल लाइट योग तपस्या भट्टी। तो क्यों हम ये योग तपस्या कर रहे हैं? हमारा अंतिम उद्देश्य तो यही है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। दुनिया वाले पूछते हैं ना, यहाँ आपका लक्ष्य क्या है, तो हम उनको क्या कहते हैं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। लेकिन देवता बनने से पहले बहुत कुछ करना होता है। देवता थे, फिर देवता जरूर बनेंगे, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें तो कोई संशय नहीं, वो तो जरूर बनेंगे क्योंकि भगवान के पास हम आए हैं जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। लेकिन देवता बनने से पहले हमें कौन सी स्टेजेस से पार करना होगा, पास करना होगा, है ना? जैसे कहीं जाते हैं तो हमें किसी स्थान पर पहुंचना है तो वहाँ रास्ते में तो हम जाते हैं लेकिन कई माइलस्टोन्स आते हैं, पता चलता है कि हम कितना फासला तय कर चुके हैं, इसके बाद कितना और करना है। तो बीच बीच में ऐसे पत्थर आते हैं जिस पर लिखा होता है कि वो मंजिल इतनी दूर है। तो इसी प्रकार बाबा ने हमें लक्ष्य तो बहुत बड़ा दिया है, पर देवता बनने से पहले ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा ना। ब्राह्मण सो देवता, बिना ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते हैं। इसीलिए देवताओं को केवल देवता नहीं कहते, ब्राह्मणों को भी केवल ब्राह्मण नहीं कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं। तो बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली का कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, जो ब्रह्मा बाप ने किया वो हमें करना है। अब ब्राह्मण तो हम सब बन गए, सभी बन गए ना ब्राह्मण, ऐसा कोई है जो कहेगा नहीं मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं हूँ, जो है वही तो आए हैं भट्टी में। तो ब्रह्मा मुख वंशावली तो बन गए, ब्रह्मा समान भी बनना है, लेकिन उसके पहले क्या बनना है? जो ब्राह्मणों के लक्षण हैं वो हमारे अंदर कंप्लीट हैं? हम वो भी अपने आप से पूछें, ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस क्या होती है? ब्रह्मा से संलग्न संबंधित कितने शब्द हैं वो सब हमारे अंदर हो। ब्रह्मा से संबंधित कितने शब्द हैं? एक है कोई ब्रह्म कहते हैं, वास्तव में है ब्रह्मा, तो एक है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त माना अमृत वेला, अगर अमृत वेला नहीं उठते, तपस्या नहीं करते तो सच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त ये बहुत बड़ा हमारा पहला नियम है, और उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं, है ना? दुनिया में तो लोग दो तीन बजे विकारी जो होते हैं वो तो उतना लेट सोते हैं और कितना लेट उठते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जब वो सोते हैं तब हम जागते हैं, हमारे लिए शुद्ध वातावरण मिल जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त। फिर दूसरा नियम ब्राह्मणों का क्या है, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोज कहते हैं। तो ब्रह्म महतत्व तो भोजन नहीं खाता, लेकिन कौन खाते हैं ब्रह्मा भोजन, ब्राह्मण। तो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्रह्म भोज खाते हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में पकाया हुआ, उनको भोग लगाया हुआ और प्रसाद रूप में हम स्वीकार करते हैं शुद्ध आहार। तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन अर्थात वो शुद्ध आहार। तीसरा ब्रह्मा से क्या संबंधित है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वास्तव में है शिव बाबा का ज्ञान जो ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाया जाता है, तो ब्रह्म ज्ञान हम वो ज्ञान सुनते हैं। कौन सा है ब्रह्म ज्ञान, बाबा की मुरली, ये सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। और चौथा ब्रह्मा से क्या संबंधित शब्द है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा ने सबसे पहले जो धारणा अपनाई वो बच्चों ने भी अपनाई। शिव बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, और ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले ये क्या, पहले तो बाबा भी तो गृहस्थी थे, सारा परिवार उनका था, बिजनेसमैन थे, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा कोई बाल ब्रह्मचारी थे, लौकिक में तो नहीं थे। लेकिन जैसे शिव बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो, तो सबसे पहले शिव बाबा द्वारा जो श्रीमत मिली वो ब्रह्मा बाबा ने पालन की, और बाबा के साथ सब बच्चों ने पालन की। सब ने कहा बाबा हम पवित्र और योगी बनेंगे, तो समाज ने विरोध किया, कितनी छोटी छोटी बच्चियां और इन्होंने ऐसी कैसी प्रतिज्ञा कर ली, अभी तो इन्होंने दुनिया देखी नहीं। तो बाबा ने कैसे सामना किया उन सब का विरोध, कैसे सामना किया, बाबा ने कहा कि भगवान ने ये आदेश दिया है, ये मैंने नहीं दिया है, और भगवान ने जो आदेश दिया सबसे पहले मैंने पालन किया, तो इनको भी भगवान का आदेश है और इसी आदेश पर सब चल रहे हैं, ये मैंने आदेश नहीं दिया है, मुझे तो पता भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान थोड़ी था पहले, वो तो भक्त थे। इसलिए ये ब्रह्मचर्य पवित्रता की धारणा, ये शुरू से बाबा ने हमारी धारणा बनाई जिस पर कितने विघ्न आए, लेकिन बाबा कहते धरत परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये सब ने प्रतिज्ञा की और कितनी मारें खाई हमारी बहनों ने, लेकिन अपना अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, और देखो उसी प्रतिज्ञा के बल से आज ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से कितनी बढ़ती जा रही है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि अपना तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा करो, माताओं बहनों के आगे स्वाहा करो, माताओं बहनों को आगे रखो, और देखो उसी के आधार से ये द लार्जेस्ट विमेन रन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये संस्था है सारी दुनिया में सबसे बड़ी स्त्रियों द्वारा, माताओं बहनों द्वारा यह आध्यात्मिक संस्था चलती है। तो ये कितनी बड़ी बात भगवान ने की। तो देखो आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने पहले एक बूंद डाली अपना तन मन धन, उनको देख के जिन्होंने भी डाली वो एक बीज था जिससे यज्ञ की स्थापना हुई, और आज वो बीज इतना फलीभूत हुआ है जो 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं, इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है सारी दुनिया में। लेकिन इन सब का आधार क्या है? शिव बाबा। और शिव बाबा हमें जो भी ज्ञान देते हैं वो सत्य ज्ञान है और समय अनुसार प्रासंगिक है, समय की मांग है। आज ये बाबा की मुरलियां 60s में चली होगी, 1960 से लेके 1969 तक, ये 8-9 साल ये मुरलियां होगी। बाबा तो उसके पहले कहते थे, बच्चे ये कागज संभाल करके क्या करोगे, कागज है ये तो फट जाएंगे। लेकिन जो संग्रह किया उस संग्रह के आधार से अभी हम वो रिवाइज करते हैं। लेकिन रोज जो मुरली सुनते हैं हमको क्या लगता है, जैसे कि बाबा ने आज ही चलाई है। जो बाबा ने उस समय बातें कही थी, उस समय तो यही लगता था ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और आज जब ये मुरली सुनते हैं तो क्या लगता है कि वो बिल्कुल हमारे सामने हो रही है। शुरू में तो वो विनाश दिखाई नहीं देता था और बाबा की हर मुरली में विनाश की बातें आती थी, हर मुरली में। तो जब विनाश की बातें आती थी तो बच्चे समझते थे कि अभी कहाँ विनाश। लेकिन उस समय बच्चों में निश्चय लाने के लिए बाबा ने विनाश के साक्षात्कार कराए, बहुत साक्षात्कार कराए। तो कई कहते अभी क्यों नहीं बाबा कराते, तो अभी जरूरत नहीं है साक्षात्कार कराने की विनाश के, क्योंकि सामने देख रहे हैं ना। रोज टीवी खोलो तो क्या दिखाई देता है टीवी पर, विनाश ही विनाश है ना। तो इसीलिए अभी साक्षात्कार की जरूरत नहीं, अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। जो महाभारत में वर्णित है धर्म ग्लानी की निशानियां, वो आज प्रैक्टिकल में सब दिखाई दे रहे हैं। और अभी दुनिया भी कहने लगी है कि विनाश आया कि आया, फिर कल की अवतार कहाँ अवतार ले चुके होंगे, ये भी कहते हैं। भगवान जरूर कहीं गुप्त रूप में आया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष अपने बच्चों के सामने ही होता हूँ, दुनिया के आगे नहीं होता हूँ। दुनिया के आगे हो जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए, भीड़ लग जाए तो तपस्या कैसे करेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर वही आएंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी जल्दी जल्दी करो। तो उसके लिए क्या करो, ये नियम तो बाबा ने दिए और हम उसका पालन करते हैं। फिर 4 सब्जेक्ट्स भी हमको बाबा ने दिए और ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स में बाबा कहते हैं अनुभवी मूरत बनो। उस दिन बाबा की मुरली थी ना, व्यक्त मुरली, एक एक सब्जेक्ट में अनुभवी मूरत बनो। खाली रटा रटाया ज्ञान नहीं, खाली सुनना और सुनाना है, पर वो अनुभव से औरों को सुनाना है। इसलिए जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है उसमें लाइट क्या मिली, रोशनी क्या मिली, माइट क्या मिली, शक्ति क्या मिली, उस पर भी बाबा कहते हमेशा विचार सागर मंथन करो। तो इसीलिए 4 सब्जेक्ट्स में अनुभवी मूर्त बनो। फिर आगे बाबा के कदमों पर चलते हैं तो बाबा ने हमें यही कहा कि बच्चे तुम्हें संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। तो संपन्न भी और संपूर्ण भी, दोनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग है? संपन्न और संपूर्ण में अर्थ का अंतर है या एक ही बात है? हाँ, जो समझते एक ही बात है संपन्न और संपूर्ण, हाथ उठाओ। नहीं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो क्या अर्थ है, कौन सुनाएगा? संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे? बोलो, हाथ उठाओ, कौन सुनाएगा? नहीं नहीं हाथ उठाओ और फिर उठकर बोलो। आप बोलेंगे? हाँ बोलो। हाँ, सोलह कला संपूर्ण और हाँ संपूर्ण निर्विकार, ये संपूर्ण और फिर संपन्न जी। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। किसमें संपन्न और किसमें संपूर्ण? सर्व गुणों में संपन्न और सर्व कलाओं में संपूर्ण, सोलह कला। तो गुणों में संपन्न और कलाओं में संपूर्ण, तो इसका मतलब क्या है? जैसे चंद्रमा होता है ना, तो चंद्रमा की रात जो पूनम की रात होती है तो चंद्रमा एकदम फुल होता है, राउंड, पूरा राउंड होता है। बाकी दिन तो कम या कम होता जाता है या बढ़ता जाता है, परंतु पूर्णमासी की रात पूरा फुल होता है, तो उसकी लाइट फुल होती है, लाइट है ना, तो फुल लाइट और एकदम गोलाकार, एकदम गोलाकार और अंदर का प्रकाश एकदम पूरा भरपूर। तो सर्व गुण संपन्न का मतलब है आत्मा सभी गुणों में संपन्न है, सर्व गुण संपन्न, एक भी गुण की कमी न हो। और सोलह कला संपूर्ण माना पवित्रता की कलाएं, ये आत्मा की पवित्रता की कलाएं हैं, इसीलिए सोलह श्रृंगार, सोलह का बड़ा महत्व है, क्योंकि सोलह दिन लगते हैं अमावस्या से लेकर पूनम तक, है ना, ये सोलह दिन होते हैं। तो जैसे जीरो से 100%, तो जीरो से 100% आत्मा की इतनी लाइट हो, इतना प्रकाश हो जो फुल बन जाए, तो इसीलिए सर्व गुणों में संपन्न अर्थात कोई गुण की कमी न हो, गोलाकार हो और प्रकाश में भी एकदम फुल हो, हर प्रकार से फुल हो, भरपूर हो, तो गुणों में भी और खास पवित्रता में भी। तो बाबा हमसे इतना ऊंचा बनने के लिए लक्ष्य देते हैं, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए ये जो हमारे अंदर कमियां, कमजोरियां, विकृतियां हैं, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। और वो विकृतियां कौन सी आती है? विकारों की। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों में जो मोटे मोटे विकार हैं वो तो चलो नहीं होंगे, काम विकार को जीत लिया है पवित्र रहते हैं, क्रोध को भी उस रूप से तो जीत लिया है, लोभ को भी जीत लिया है। आज भी बाबा ने कहा दाल रोटी खाना है और क्या करना है, हाँ प्रभु के गुण गाना है, तो इसीलिए वो भी जीत लिया है, मोह को भी जीत लिया है, अहंकार को भी जीत लिया है। हाँ, तो जो समझते हमने पांचों विकारों को जो मोटे मोटे हैं ये जो उनको जीता है वो हाथ उठाएं। क्यों सब नहीं उठा रहे है? सब नहीं उठा रहे हैं? अच्छा नहीं चलो अगर नहीं जीता है तो यहाँ के उसको स्वाहा करना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं मोटे मोटे रूप में तो फिर भी स्वाहा किया है, परंतु वो जो छोटे 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 विकार है ना, जिसको बाबा कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, जलस, हसद, राग, हाँ ये सब जो भी है, चलो क्रोध मोटा रूप नहीं होगा लेकिन क्रोध के अंश बहुत है, काम वासना का अंश बहुत है, लोभ के अंश बहुत है, मोह के भी अंश बहुत है, उनका अंश। तो बाबा कहते हैं अंश और वंश सहित खत्म करना है। चलो और कुछ न सही, कर्म में नहीं, वाचा में नहीं, लेकिन संकल्प में तो है। तो संकल्प में भी अगर आते हैं तो ये व्यर्थ संकल्प है। बाबा कहते तुम्हारी पवित्रता इतनी हो जो स्वप्न में भी नहीं हो, संकल्प तो क्या स्वप्न में भी नहीं हो, क्योंकि स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, वो स्वप्न से पता चलता है। लेकिन संकल्प तो हमारे हाथ में है ना, हम क्या संकल्प करते हैं। तो स्वप्न में भी न हो तो उसके लिए संकल्प में भी न हो, और संकल्प में भी नहीं हो ये तब होगा जब हम जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं उसमें न हो, फिर वो डायरेक्ट उसका प्रभाव हमारे संकल्पों पर भी पड़ता है। क्योंकि अगर सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो संकल्प में तो जरूर आएगा ही। संकल्प में केवल आया, वाणी कर्म में व्यवहार में नहीं आया, तो उसको हम दबाकर रोक सकते हैं। जिसके लिए बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो उस समय क्या कहो, नो, नहीं, नहीं, है ना। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी पर पूरा कंट्रोल होता है, पर समझो मान लो उस समय स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी को तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, धीरे 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 कम करना पड़ेगा। और स्पीड ब्रेकर जैसे ही आया तो कई बार रोकना भी पड़ता है। लाइट आ गई, वो ट्रैफिक लाइट आ गई तो गाड़ी को एकदम रोकना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प आए, नहीं, नहीं, ये नहीं का जो स्पीड ब्रेकर जैसा है, या इसको कहो कि ब्रेक जैसा है, उस ब्रेक का इस्तेमाल करो। लेकिन हम उसमें बह जाते हैं व्यर्थ संकल्पों में। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये क्यों 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 के क्यों लग जाती है, जो वो क्यों लगा, इंग्लिश में क्यों लगाते ना ऐसे, और ए लगाओ तो दो दो लकीरें सीधी सीधी है, तो इसीलिए बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। इसीलिए उसको आरंभ में ही ब्रेक लगाओ, नहीं। परंतु चलो कोई बात हो गई बात, अब उसको वापस तो रोक नहीं सकते हो, तो हो गई, मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया, अब उसके बाद फिर क्या करना है, पश्चाताप थोड़ी करना, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। अब वही सोचते रहेंगे तो फिर वो शब्द तो याद ही रहेगा ना, क्योंकि क्योंकि बोल तो दिया है। तो इसके लिए फिर बाबा कहते हैं नॉट के साथ डॉट, चलो ड्रामा। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान भी हमें बहुत सुंदर दिया है। बिंदु लगा दो, तीन बिंदु में आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, नथिंग न्यू, हो गया ड्रामा। अभी मेरा आगे से व्यर्थ संकल्प न चले, क्योंकि ये व्यर्थ संकल्प ही एक बोझ बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि ये शरीर का भी जो बोझ है, वजन, डॉक्टर भी कहते हैं वजन कम करो, वजन कम करो, तो हम क्या अंदर में लेते उस अनुसार वजन बढ़ता है। तो जैसे शरीर के लिए कहते वजन कम करो, इसी प्रकार संकल्पों के लिए भी तो वजन कम करो ना, वो भी कितना बोझ बन जाता है। तो कैसे वो संकल्प बंद हो, उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है, नॉट और डॉट, नहीं, और दूसरा जो हुआ मैं आत्मा बिंदु, न्यारी बन जाओ। तो इसीलिए डबल लाइट, हल्कापन बहुत जरूरी है, तभी उड़ती कला का अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी समय बहुत कम है, अभी चलने का समय गया, दौड़ने का समय भी गया, हाई जंप का भी समय गया, अभी कौन सा समय है, उड़ने का समय। जैसे किसी की डेथ होती है तो हमें वहाँ पहुँचना होता है, भाई अंतिम संस्कार के समय पहुँचना है, हम सोचेंगे हम ट्रेन में जाएंगे, ये करेंगे तो 3 दिन के बाद पहुँचेंगे, तब तक तो पूरा भी हो जाएगा, तो क्या करते उस समय, हाँ क्या करते, फ्लाइट में जाते हैं। भाई फ्लाइट में एक घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं अभी बाकी जो बातें हैं वो सब का समय पूरा हुआ, अभी उड़ती कला। तो उड़ती कला के लिए बहुत हल्का होना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम हो कि जो हवाई जहाज होता है ना, अभी कितना हजारों लीटर हवाई जहाज फ्यूल भरता है, पेट्रोल भरता है। यहाँ से आप ये दिल्ली से बॉम्बे से लंदन जाता है, अमेरिका जाता है, नॉन स्टॉप, कहीं भी बीच में रुकता नहीं है। तो कितना उसमें पेट्रोल होगा, हजारों लीटर होगा। तो वो इतना सारा पेट्रोल अगर भारी होगा तो हवाई जहाज उड़ेगा कैसे? तो वो जो पेट्रोल होता है ना, वो गाड़ी मोटर गाड़ी वाला पेट्रोल नहीं होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। और वो कैसा होता है? इतना हल्का होता है, पानी से भी हल्का। पानी में भी वजन है, लेकिन वो जो पेट्रोल होता है वो पानी से भी हल्का होता है। तभी तो इतना वो जहाज भर सकता है ना, वो टैंक भर सकता है और उड़ सकता है। वो हमने देखा है कैसा पेट्रोल होता है, बिल्कुल इतना सूक्ष्म बात नहीं पूछो। क्योंकि ये जो आसाम में और कई जगह है रिफाइनरीज है, जो क्रूड ऑयल जो धरती से ऑयल निकलता है ना, तेल निकलता है, इतना काला 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 तेल होता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, बहुत ही भारी होता है। तो उसको साफ करते हैं, ये साफ करने लिए रिफाइनरीज है भारत में, सब जगह है। तो वो रिफाइनरीज में एक एक चीज धीरे 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 निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। हाँ, तो मैं गई थी आसाम में, आसाम में बहुत रिफाइनरीज है और पेट्रोल के ये क्रूड ऑयल के कुएं भी है, बहुत बड़े बड़े तो नहीं है जैसे मिडल ईस्ट में है, पर तो है। तो मैं गई थी एक जगह देखने के लिए कि ये वो उस काले जो तेल है उसमें से कैसे किससे उसको साफ करते हैं। तो देखा मैंने, सबसे पहले जो चीज निकलती है ना, इतना काला काला होता है जैसे कोयला, तो वो किचरा होता है, तो वो अलग हो जाता है। परंतु कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब सफल होता है। पहला पहला जो निकलता है वो डामर बन जाता है, डामर डामर होता है ना जिससे रोड बनाते हैं, वो डामर कितना काला होता है। तो वो पेट्रोल से ही तो निकलता है, वो डामर होता है, एकदम काला काला निकलता है। फिर धीरे फिर थोड़ा थोड़ा साफ होता है, फिर थोड़ा और आगे साफ होता है। जो दूसरी चीज निकलती है वो भी एकदम चिकनी चिकनी होती है, और उसमें से वो वैक्स होता है, वैक्स उससे मोमबत्तियां बनाते हैं। तो हमने देखा इतनी सुंदर सुंदर मोमबत्तियां वो बनाते हैं और बेचते हैं, वो सब उसमें से निकलता है। फिर कई चीजें निकली, 16 चीजें निकली, और वो सब एक एक को तो देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत लंबा था और टाइम भी नहीं था। लेकिन हम देखते गए एक में वो साबुन का जो तेल निकलता है वो सब उसमें से ही निकलता है सब कुछ। और फिर ये आप सबको बताना पड़ेगा कि अपना अंदर जो आपके पास ट्रैफिक कंट्रोल है वो सब बंद करना है, यहाँ जरूरत नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल की, यहाँ अपने आप बचता है। तो इसीलिए लास्ट में जा करके वो पेट्रोल निकलता है एरोप्लेन का, और वो हाथ लगाया मैंने, बिल्कुल पानी भी भारी है, इतना वो हल्का है। तो जब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको डबल लाइट बनना है, इसका मतलब क्या है? डबल लाइट, इतना हल्का बनना है कि कोई भी व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो। पर वो तब होगा जब कोई भी जो विकार के अंश है वो भी न हो, क्योंकि वो अगर अंश भी है वो भी बोझ बन जाएंगे। होता है ना, जब जो मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, अब वो ईर्ष्या मन में तो आएगी ना, हाँ ये ऐसे क्यों इतना आगे बढ़ गई, क्या समझती है अपने आप को, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और ये जो हमारे अंदर वो सोच चलती है, भले हम कुछ मुख से बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सोच भी जो चली ना, ये सोच भी भारी कर देती है। उसके लिए बाबा ने इतनी ज्ञान की पॉइंट्स दी है। तो अनुभवी मूर्त बनो का मतलब क्या है, एक एक ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनो। जब अंदर में ईर्ष्या भी आए, तो ईर्ष्या आए तो उस समय क्या सोचो, थोड़ा आवेश आए अंदर में तो उस समय क्या सोचो, थोड़ा लोभ की वृत्ति आए तो उस समय क्या सोचो, तो क्या सोचो वो भी बाबा मुरलियों में सुनाते हैं। हर मुरली में कुछ न कुछ बाबा का उस प्रकार से आता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक कदम कदम पर क्या सोचो वो बाबा हमें बताते। जैसे कल की मुरली बाबा ने कहा अमृत वेले उठो, तो उस समय क्या सोचो, विचार सागर मंथन करो। विचार सागर, हम कौन है, क्या हमको बाबा बना रहे हैं, अपनी अपना भाग्य देखो। कितनी बातें हम सोच सकते हैं। सवेरे नींद आती है, क्यों उस समय विचार सागर मंथन नहीं करते हैं? अगर करें ना तो आंखें एकदम खुल जाए। परंतु उसका आधार क्या होगा, रात्रि को हम क्या सोचकर सोते हैं, क्योंकि वही असर सवेरे होगा, अमृत वेले भी होगा। इसलिए बाबा हर चीज के लिए कहते, कौन सी ऐसी बात है जो बाबा के मूल्यों में नहीं आती है, कदम कदम पर कैसे चलो बाबा के मूल्य में आता है। नोट करते होंगे ना आप सभी, अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा क्रोध मुक्त बनो। अब जो समझते हैं मैं क्रोध मुक्त हूं, हाथ उठाओ, क्रोध मुक्त हूं, पूरा क्रोध मुक्त। अच्छा, वह दो तीन ही हाथ उठा रहे, बाकी नहीं है क्रोध मुक्त। अच्छा, लोभ मुक्त लोभ मुक्त। अच्छा, अहंकार मुक्त, क्योंकि ये सब बोझ बन जाता है, सब भारीपन है ये, जिससे हमारी डबल लाइट स्थिति नहीं बनती है। क्योंकि डबल लाइट में दो अर्थ होते हैं ना, लाइट डबल, तो दो लाइट के दो अर्थ हैं। एक लाइट का अर्थ है हल्का और दूसरा लाइट का अर्थ है प्रकाश, है ना। प्रकाश को भी लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और हल्का हल्केपन को भी लाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हल्का भी होना है और प्रकाश स्वरूप भी होना है। तो प्रकाश माना ज्ञान का प्रकाश। तो हर संकल्प में वो ज्ञान का अगर प्रकाश है तो हम हल्के हो जाएंगे। हर संकल्प में अगर वो शक्ति है तो ऑटोमेटिकली हम पावरफुल हो जाएंगे। तो डबल लाइट माना प्रकाश भी और डबल लाइट माना हल्का भी। तो हल्का भी होना है और प्रकाश स्वरूप भी बनना है। तो प्रकाश आएगा एक एक ज्ञान की पॉइंट की समझ से, और उसका जो उपयोग है, जो प्रयोग है, जिससे वो शक्ति आती है, वो है वो हल्कापन लाता है, लाइट और माइट आती है। तो बाबा ने हम बच्चों को डबल लाइट बनाया, एक सेकंड में न्यारे बन जाओ, उसके लिए बैलेंस सिखाया है। क्योंकि हमारा ये ज्ञान मार्ग कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है और ग्रस्त मार्ग भी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम ग्रस्ती नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो। तो ग्रस्त मार्ग भी नहीं है और निवृत्त मार्ग भी नहीं है। तो ये कौन सा मार्ग, हम कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, ये मध्य मार्ग है। क्योंकि जो ग्रस्त मार्ग है ना, उसमें तो भोग विलास है, भोग, वो भोग वृत्ति है। और भोग वृत्ति में क्या, जिस भौतिकता, भौतिकता का मतलब ही है, ये पांचों ही विकार विकृतियां उस भोग विलास में है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों ही विकार ये शरीर से संबंधित है ना। हम कहते हैं ना पंच इंद्रियां, पंच सेंसेस कहते हैं, ये पंच इंद्रिया पंच ये रस है, तो जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये रस है, ये पांच इंद्रियों के आधार से ये रस बने हैं। तो ये रस कैसे विकार लाते हैं? स्पर्श रस, तो स्पर्श रस किसको कहते हैं? ये काम विकार। काम विकार में क्या है? स्पर्श रस ही तो है, है ना? तो स्पर्श रस माना काम विकार। फिर ये आंखें हैं, ये नेत्र रस भी है, तो ये नेत्र रस माना क्रोध। जो मन में अगर गुस्सा आता है वो सबसे पहले आंखों से दिखाई देता है। जैसे कहावत है, चेहरा मन का दर्पण है। जो मन में है वो चेहरे पर प्रकट होता है, लेकिन चेहरे में भी पहले आंखों में प्रकट होता है। किसी में गुस्सा है तो पता कैसे चलता है गुस्सा है? बोले बोल नहीं रहा है, कैसे पता चलता है कि ये गुस्सा है इसको? हाँ, उसकी आंखों से। तो ये क्रोध आंखों से दिखाई देता है, फिर मुख से आता है। तो जी, तो पहले है स्पर्श रस, वो काम वासना, फिर ये नेत्र रस, ये क्रोध, फिर जीभ रस, ये लोभ, खाऊं खाऊं खाऊं। बाबा कहते हैं ना, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं, है ना? किसी को कीड़े होते हैं ना पेट में, तो सारा दिन भूख लगती रहती है, सारा दिन खाऊं खाऊं खाऊं, वो कीड़े खा जाते हैं उनका सारा भोजन। तो लोभी नर तो कंगाल ही है ना, सारा दिन लोभ वश है वो। तो ये लोभ का वो जीव रस है। फिर मोह, मोह का कौन सा विकार है, कौन सा अंग है? ये गंध रस। जैसे बच्चा होता है ना, कोई व्यक्ति उसको कुत्ते से बहुत प्यार है, तो सारा दिन क्या कहेगा, कुत्ते को रगड़ता रहता है नाक से अपने, उसकी स्मेल उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मोह है। कि मोह के वश होता है उसको, कैसे एकदम गले लगते हैं और एकदम उसकी दुर्गंध भी लेते रहते हैं। तो ये नाक, ये गंध रस, ये मोह की निशानी है। और अहंकार, ये कान, ये कन रस। अहंकार में क्या होता है, किसी ने कोई मेरी ग्लानी कर रहा है और एकदम मैंने सुन लिया कि ये मेरी ग्लानी कर रहा है, तो क्या हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं, ये मेरी ग्लानी कर रहा है, क्या समझता है अपने आप को। तो बाबा ने इसलिए हमको क्या कहा, बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो। ये क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? क्योंकि इसमें व्यर्थ बहुत जाता है। चलो विकार नहीं भी होगा, लेकिन व्यर्थ बहुत होता है। फिर बाबा कहते, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि ये दो इंद्रियां हमारे वश में है। हम जो सुनते हैं, न सुने हमारे हाथ में है, न सुने। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति मुझे कुछ सुना रहा है परंतु मेरा ध्यान कहीं और है, तो वो मेरे से पूछेगा, बहन जी मैंने आपको ये कहा, आपने समझा, आपने सुना? तो मैं क्या कहूंगी, सॉरी मैं जरा कुछ सोच रही थी, तो मैं कोई और बात सोच रही थी, इसलिए उसने जो सुनाया वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। और देखते हुए नहीं देखो, अभी आंखों को बंद तो नहीं करेंगे, सब दिखाई देता है, लेकिन देखते हुए नहीं देखो ये बहुत बड़ा अभ्यास है। इसलिए बाबा कहते हैं, साइट सीन समझो, ट्रेन में बैठे हैं, चलो देख रहे हैं, वो तो पास हो गया, हम तो आगे बढ़ गए। तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि ये दोनों इंद्रियां हमारे वश में है, आंखें और कान। पर ये नहीं कि बोलते बोलते नहीं बोलो, ऐसे नहीं। ये इंद्रियां सब हमारे वश में है, बाबा उसने उस दिन भी मुरली में कहा, ये हाथ पैर सब हमारे वश में है। तो जैसे ये वश में है, तो मन भी हमारे वश में होना चाहिए, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तब बाबा कहते, तुम डबल लाइट बनोगे, और जब डबल लाइट बनेंगे तब फिर क्या बनेंगे, बाप समान बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को देखा, हमारी दादियों को हमने देखा, कैसे न्यारी प्यारी होती गई, न्यारी प्यारी होती गई और एकदम फरिश्ता बन गए। तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बन गए, सब हड्डियां यज्ञ में दी, अंत तक सेवा की। तो डबल लाइट जब तक नहीं बने हैं तब तक फरिश्ता भी नहीं बनेंगे। इसीलिए आपकी भट्टी का शीर्षक ही रखा है डबल लाइट योग तपस्या भट्टी। तो यहाँ से आप क्या हो बन के जाएंगे, डबल लाइट फरिश्ता बन के जाएंगे यहाँ से, डबल लाइट फरिश्ता। हाँ, ये लक्ष्य रखेंगे। आपके क्लासेस भी उसी अनुसार है। हमारे कई वरिष्ठ भाई बहने आकर के आपके क्लासेस कराएंगे कि कैसे आप डबल लाइट फरिश्ता बनो। उसी अनुसार आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है ये 3 दिन के बाद आप यहाँ से जैसे आए हैं वैसे नहीं होके जाएंगे, आप बदल के जाएंगे। इसलिए ये भट्टी है, भट्टी माना तपना, तपना, भट्टी माना परिवर्तन होना, भट्टी माना गलना, है ना। भट्टी में आग में जो चीज पड़ती है वो गल जाती है, पक जाती है। कठोर चीज नरम हो जाती है, नरम चीज मजबूत हो जाती है, ये सब बदल जाता है। कोयला काला है वो राख बन जाता है, ये सब परिवर्तन हो जाता है। तो हमको भी क्या बनना है, परिवर्तन होके जाना है। तो आज रात को एक लिस्ट निकालना, कौन सी मेरे अंदर कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी खामियां हैं। तीनों में अंतर है, कमियां कौन सी है, जो कमी है वो भरना है, जो कमजोरी है उस कमजोरी में ताकत लानी है, और जो खामियां है वो निकालनी है। तीनों शब्दों में अंतर है। तो ये जब हम निकालेंगे अपनी छोटी 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 जो कमजोरियां, उनको पहले पहचानेंगे हमारे संकल्पों में क्या है, हमारी वाणी में क्या है, हमारे कर्म में क्या है, उसके आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। तो आज तो आपको सब इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए होंगे ना, हाँ सब दे दिए होंगे। और अभी 7:30 का गीत भी बजेगा और उसके बाद हमारी मधुरवाणी ग्रुप आकर के आप सबके लिए स्वागत गीत गाएंगे, फिर आप सबको टोली मिलेगी। और रात्रि को कुछ है,
बाबा के घर में बाबा के बच्चों का कोई ग्रुप आए और उसमें मधुरवाणी ग्रुप गीत न गाए, स्वागत न करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप के क्या बोलूं, रचनाकार आदरणीय सतीश भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ में हल्दर भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत सुमधुर गीत लेकर, स्वागत गीत लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी आप सबके स्वागत में मधुरवाणी ग्रुप एक सुंदर गीत प्रस्तुत कर।
ओम शांति। सोनी पत कहो स्वर्ण पत, ये है सोनी कश है ना, जोरदार तालियां तो हो जाए। मधुबन वाले बेहद खुश हैं अब सबसे मिलके, बाबा बाबा सेवा सेवा आपका कहना है। ओ मेरे मीठे बाबा आप जैसा बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत भाई जी ने लिखा है, सतीश भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
मधुबन भूमि पर आने का बड़ा भाग्य चाहिए, भाग्यवान आते हैं और मधुबन में भी पांडव भवन में आने का मौका मिले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, भाग्यवान जो भाग्य मिला मधुबन में भट्टी करने का और सोने के सुहागा उस पर भी पांडव भवन में रहने का, पांडव भवन में रहने का। और सोनीपत वैसे भी वरदानी भूमि है, जगदीश भाई के दिन हमने मनाया, जगदीश भाई के साथ साथ सोनीपत जो उन्होंने स्वप्न देखा, आप सब सोनीपत वाले उसको साकार कर रहे हैं। हाँ ये टाउन वाले, हाँ लेकिन सोनीपत तो आ ही आते हैं। जी जी, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ ढेर सारी पांडव भवन में यहाँ आने की। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत।
मॉडल टाउन के भाई बहनों का कहना है, हम तपोभूमि में अटल तपस्या ऐसे मिलकर करना है। ओ मेरे मीठे बाबा, हमें आप जैसा बनना है। ओ मेरे प्यारे बाबा, संपन्न संपूर्ण बनना है। है भाग्यवान जो भाग्य मिला मधुबन में भट्टी करने का, सोने के सुहागा इसमें भी पांडव भवन में रहने का। है भाग्यवान जो भाग्य मिला मधुबन में भट्टी करने का, सोने पे सुहागा उसमें भी पांडव भवन में रहने का। हीरे जैसा समय मिला सफल अब करना है। ओ मेरे मीठे बाबा, हमें आप जैसा बनना है। ओ मेरे प्यारे बाबा, संपन्न संपूर्ण बनना है। मधुबन आने भर से ही सहज योग लग जाता है, चारों धाम तीर्थ करके जीवन सफल हो जाता है। मधुबन आने भर से ही सहज योग लग जाता है, चारों धाम तीर्थ करके जीवन सफल हो जाता है। मन का मुख का मोबाइल का मौन रखना है। ओ मेरे मीठे बाबा, हमें आप जैसा बनना है। ओ मेरे प्यारे बाबा, संपन्न संपूर्ण बनना है। सोनीपत मॉडल टाउन को रामदेव दीदी पाल रही, यहाँ शशि दीदी शीलू दीदी शकुंतला दीदी संभाल रही। सोनीपत मॉडल टाउन को रामदेव दीदी पाल रही, यहाँ शशि दीदी शीलू दीदी शकुंतला दीदी है संभाल रही। इन चार दिनों में 14 वर्ष का बल वो भरना है। ओ
बाबा, हमें आप जैसा बनना है ओ मेरे प्यारे बाबा, संपन्न संपूर्ण बनना है ओ मेरे मीठे बाबा, हमें आप जैसा बनना है, हमें आप जैसा बनना है।